نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 19ویں پارے کا آغاز کریں گے اور تزکیہ سیریز میں ہم اس کو جس موضوع پہ دیکھیں گے وہ ہے ادب. ادب مینرز کہتے ہیں اس کو. اسی کو انسان کا ایٹیچیوڈ یعنی ایٹیچیوڈ سے مراد یہ ہے کہ اچھا یا برا معاملہ کہتے ہیں. تھوڑی سی بات شروع میں ہی کر لیتی ہوں. ویسے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو جو ہم نے اس تھیم پہ لی ہے اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ کی ہوئی وہ خوبصورت باتیں ہیں جن کو پڑھتے وقت مجھے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا سلیقہ سکھا کہ میں نپے تلے لفظ بولوں اور خوبصورت بات کروں. یہ سورت شورا کی آیت نمبر 78 سے لے کر آگے کی کچھ مزید آیتیں. وہاں جائیں گے تو آپ خود ہی ادب کا وہ رنگ دیکھ لیں گے جس پہ ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں. پوائنٹس میں ہم بات کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. آپ دیکھیے کہ ادب کیا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب کے لفظ کو لکھیں اپنے نوٹس میں. الف دال اور با. اب اس کو اپوزٹ وے پہ پڑھیں. پیچھے سے پڑھنا شروع کریں تو یہ بنتا ہے بدا آ. اور بدا کہتے ہیں شروع کرنے کو. ان تب دو یا بدا آغاز کے لیے آتا ہے. بڑی خوبصورت سی ایک مماثلت ہے اس لفظ کے اندر اور وہ کیا ہے کہ تربیت کا آغاز ادب سے کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ کہ آج کے دور میں علم کا تو دور دورہ ہے لیکن ادب بالکل مفقود ہو گئے. ادب ہے ہی نہیں. اسی لیے استادوں کے نام لیتے ہوئے دیکھے گئے بچے ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں ٹیچرز کے نام لینے. اور میں حیران ہوتی ہوں جب میں ریگولر سکولوں کی باتیں بچوں سے سنتی ہوں. اسلام نے تعلیم سے زیادہ ادب پہ زور دیا. پہلے دور میں استاد کو مؤدب کہتے تھے ادب سکھانے والا اور اسٹوڈنٹ کو کہتے تھے مؤدب جس کو ادب سکھائے جائیں. اور ایک کسی امام کا نام یاد نہیں مجھے ستارہ شاید امام شافی تھے یا کون تھے کہ ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ میں نے ان سے علم تو ایک دفعہ سیکھا یعنی میں اپنے ایک استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے تو ایک دفعہ گیا لیکن ان سے ادب سیکھنے کے لیے میں بار بار گیا. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ادب کا تعلق جو ہے نا یہ انسان کی فطرت سے ہے مینرز کے اندر ہی آتا ہے جس کو آپ مینرز کہہ سکتے ہیں. آپ نے دو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں تزکیہ انٹروڈکشن کے لیکچر میں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک کیا ہے فطرت اور ایک ہے جبلت. جبلت ہے یہ میرا آپ کا جسم جو ہمیں سامنے دکھ رہا ہے. یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے لیکن فطرت کیا ہوتی ہے جو انٹلیکچوئل ہے یا انسان کی انسٹنکٹ سے اس کا تعلق ہے. تو ادب کا تعلق جو ہے نا یہ انسان کی فطرت سے. اللہ تعالیٰ جب بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کے اندر ادب لے کر آتا ہے اور اس ادب کی اگر اچھے طریقے سے پرورش کر دی جائے تو پھر انسان بہت اچھے کام کرتا ہے اور یہی ادب جو ہے بعد میں عادت میں ڈھل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن بچوں کو بچپن سے ادب سکھا دیے جاتے ہیں مینر سکھا دیے جاتے ہیں پھر وہ بعد میں عادتن بھی لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے اثرات تو بعد میں دیکھیں گے. کچھ اس کی اقسام اور اس کے طریقہ کار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہمارے ادب کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے اور اس کے ساتھ کیسے کیا جائے. ہم سب سے پہلے بات شروع کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. تقریباً 13-14 ہم پوائنٹس دیکھیں گے اس میں اس لیے 1-2 کر کے لکھیں گے تو آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کے ادب کیا ہوں گے. ہم انسان ہیں میں بندہ ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کسی کو شریک ٹھہرانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنا ہے. سچ کوئی ہمارے ماں کے ساتھ دوسری ماں لے آئے تو اپنی ماں کی انسلٹ کرتا ہے نا تو مشرک بے ادب ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کیا ہے کہ اتق اللہ حق تقاتی ہی. اللہ کے سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے. جب ہم اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ادب کا شکار ہے. ہم بڑے کو غلط کے سامنے غلط کام نہیں کرتے. اکیلے میں ایک انسان بڑی کیجول سی حرکت کر سکتا ہے لیکن جو ہی اس کے سامنے کوئی بڑا آتا ہے تو وہ سنبھل کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح تنہائی میں گناہوں سے نہ چوکنا یا نیکیوں کے موقع کو نہ اویل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مؤدب نہیں ہے. تیسری چیز ہے اللہ اکبر. اللہ کو سب سے بڑا ماننا اس کو اس کے مقام پہ رکھنا. اور نماز میں اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر عملی زندگی میں بھی اکبر ہو جائے گا کیونکہ جو اکبر ہو جاتا ہے پھر اس کی ہر بات بڑی ہو جاتی ہے دوسروں سے. اگلی چیز ہے کہ نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا، ادب کے ساتھ، کیونکہ جس کے لیے آپ کے دل میں جو مقام ہوتا ہے نا، اس کو آپ کیسے پرکھیں گے؟ اس کا آپ کے سامنے کھڑا ہونا. آپ دیکھیں ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، یوں سینے پہ ہاتھ باندھا ہے، یہ دیکھیں ذرا میں یوں بیٹھی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت ہی آکورڈ لگ رہی ہوں گی. کوئی شخص آپ کے سامنے آئے، سینے پہ ہاتھ باندھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بالکل سامنے آ کے بیٹھ جائے اور ساتھ ہی ساتھ حرکتیں کرے، بعد میں کانوں میں میل نکالنے لگے یا ٹانگیں آپ کی طرف کرے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے. جس کے بارے میں آپ کے دل میں عزت ہوتی ہے نا، آپ کا پوسچر اس کو ظاہر کرتا ہے. نمازوں کے اندر خشوع کب آتا ہے؟ جب واقعی بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف اور تسبیح کی جائے، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کیا جائے، اپنی زندگی کا مرکز اور محور اللہ کو بنایا جائے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، جس کو آپ للہیت کہہ سکتے ہیں. خون و ربانیین سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، یعنی انسان کو دیکھ کر لگے کہ یہ اللہ والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو رب یاد آتا ہے، ایسا بن جائے، اس کی سوچ، اس کی سب چیزیں اللہ کے طرف گرد گھوم رہی ہوں. پھر اس کے بعد اگلا ادب کیا ہے کہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا مل جائے تو اس صفحے کو، اس کاغذ کو اوپر اٹھا دیں، یعنی پورے شعور کے ساتھ انسان اپنی ان کاپیوں کی، ان کتابوں کی، قرآن پاک کے ان نسخوں کی عزت کرے جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ماں کی تصویر پاؤں میں رکھ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. ماں کا نام لکھے اور آپ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے مس لیں، نہیں کر سکتے. تو لہٰذا شعوری طور پر انسان اللہ تعالیٰ کے نام کو زمین سے اوپر رکھے، کہیں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا دیا جائے. پھر اسی طرح اگلا ادب کیا ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹی سچی قسمیں نہ کھائے. جھوٹی تو کھانی نہیں، سچی بھی نہ کھائے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے جب آپ کسی کی قسم کھاتے ہیں نا، تو دوسرے لفظوں میں آپ اس کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کی کیجوئل ہستی نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ بات میں اللہ تعالیٰ کی بات کریں. پھر اسی طرح اس میں اگلا ادب کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی اچھے کام سے رک نہ جائیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تجلو، اللہ کو نہ بناؤ، اردت لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے ایک ڈھال نہ بناؤ. بس آپ نے کسی کی شادی کرائی، رشتہ نہیں صحیح ہوا، باتیں سننی پڑی، تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گا. اس طرح کی بات کرنا یہ بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر اس سے دعا مانگے. جیسے اسماء الحسنیٰ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھا جائے. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا نام نہ ایجاد کر دے. اور خاص طور پہ یہاں کہوں گی کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اپنی مرضی کے وظائف مرتب کرتے ہیں تو وہ بھی اصل میں بے ادبی ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ خود بخود اپنی طرف سے کوئی کام کرنے لگے. پھر اسی طرح اللہ کا نام لغو چیزوں پر نہ لے، شعور سے بات کرے. مثلاً بعض لوگ بڑے کیئرلیسلی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے، وہ اللہ نے کیا ہوگا، اور اللہ نے دیکھو لوگوں کو ڈبو دیا، یہ جملے بہت سوچ کے بولے انسان. پھر اسی طرح اگلی چیز کیا ہے کہ انسان کے دل میں جتنا اللہ کا ادب آئے گا نا، اس کا اگلا اثر کیا ہوگا کہ اس کے اعمال میں اس کا عکس آئے گا، اعمال اچھے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر قرآن پاک کا ادب ہوگا. یعنی اسی ادب میں سے دوسرا ادب شروع ہو جاتا ہے، قرآن پاک کا ادب. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو آپ اس کی بھی ادب کریں گے. آپ قرآن پاک کا ادب کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادب سے سنیں. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ فن سے تو خاموش رہو، غور سے سنو، فاستمعوا، کیونکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر ایسی محفلوں کی قدر کی جائے جہاں اللہ کا کلام ہو. پھر ایسی محفلوں کے لیے مینر کیا ہے کہ بے ترتیب نہ بیٹھا جائے، بے دلی سے وہاں نہ بیٹھا جائے. پھر قرآن پاک کی مجلس میں سو جانا انتہائی بے ادبی کی بات ہے. کب سوتے ہیں ہم جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ کوئی خاندانی سیاست پہ باتیں چل رہی ہیں اور ہم سوتے ہیں؟ ہمارے فائدے کی کوئی ڈیل چل رہی ہو جس میں ہمیں ہزاروں کا فائدہ ہونا ہو تو ہم سوتے ہیں؟ صرف قرآن میں وہی سوتا ہے کہ جس کا دل قرآن میں نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بات کرتے ہوئے قرآن کی بات کرنے والے کو بیچ میں ٹوک دینا، اس کی انسلٹ کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ قرآن کی مجلسوں میں ادب کیا ہے کہ وہاں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور کر لیا جائے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. مثلا سیل فون پر میسیجنگ کرنا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ ادب کی بات ہے کہ بے ادبی کی بات ہے؟ آپ دیکھیے قرآن جس کے دل پہ اترے گئی نہیں، اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے بعض دفعہ ہم پارا تو پورا سن کے جا چکے ہوں گے لیکن ہمارے دل پہ کچھ کمی اثر ہوگا. پھر اسی طرح اور باتیں اس میں آپ خود ہی فیل کر سکتے ہیں क्योंकि मैं यहाँ कहूँगी तो आप सोचेंगे शायद मैं आपको यहाँ के लिए कह रही हूँ, लेकिन हकीकत है। आप फील कर लें, जो बंदा डूब के सुनता है उसका दिल फिर अपना नहीं रहता। तो इसके बाद बहरहाल हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो इंसानों के साथ अदब, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला और उसके कलाम के साथ अदब था। इंसानों में सबसे ऊपर मुकाम है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। उनके बारे में अदब क्या है कि पहली बात यह है कि उनका नाम सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़े, जैसे अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने जो सिखा दिया वही तरीका है बेहतरीन तरीके से। फिर इसके बाद ये कि अल्लाह के नबी की हदीस को सुनकर चुप कर दे आगे, ना राय दे ना तनकीद करे। सूरह हुजरात में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ला तुकद्दिमु बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। फिर उसके बाद रसूल का अगला अदब क्या है कि सुन्नतों का एहतराम किया जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका लोगों का अदब किया जाए, मसलन सहाबा कराम, अजवाज मुतहरात का। जो लोग सहाबा को गाली देते हैं दर हकीकत वो अल्लाह के नबी ही की बेअदबी करते हैं। फिर इसी तरह हस्ब तौफीक आपकी सीरत को पढ़ा जाए, उसके अंदर से अपने लिए अमल की बातें ली जाए। और इसी तरह रसूल के सारे पॉइंट जो आगे हम कुरान में पढ़ते जाएंगे वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंसानों में लें तो फिर इसके बाद अगला दर्जा आता है बड़ों का, यानी बड़ों का अदब किया जाए। बड़े दो तरह से बड़े होते हैं, एक उम्र के बड़े जो हमसे एज में बड़े होते हैं और एक इल्म में बड़े, और इसी तरह इसी में एक तीसरा आप कर सकते हैं रुतबे में बड़े। इल्म में जो बड़ा है उसकी तो इज्जत होगी चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो या बड़ा हो। मसलन के उसका नाम लेते हुए बात करना, उससे बहुत बेतकल्लुफ होकर बात करना, ये बेअदबी में आएगा। फिर इसी तरह ये कि सलाम में पहल करना, ऐसी बात ना करना कि जिससे उनकी तसलील हो। फिर उम्र में जो बड़े हैं उसमें ख़ास तौर पर मुश्किल कब होता है, जब वो मुलाजमीन हो, बुजुर्ग मुलाजिम है, ड्राइवर है, तूत कार करना, उनसे गलती हो गई तो उनको बताना। अपने बच्चों को अदब सिखाएं कि अपने घर के ड्राइवरों को तूत कार से ना बोलें, मासियों को ए करके ना बोलें। बाद लोग ठुक बच्चे ठुकरे मारते हैं अपने मुलाजमों को पाँव से, इंतहाई बेअदबी की बात है जो बचपन से शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह ओहदों में जो लोग बड़े होते हैं ना, तो उसमें मसलन मुल्क का सरबरा प्राइम मिनिस्टर है या प्रेजिडेंट है, वो कौन भी है, आपकी बला से आपका अदब क्या है कि आप उसके लिए अच्छी बात करें। अदालतों के बड़े काजी हैं, जज हैं, किसी इदारे के बड़े, कोई प्रिंसिपल है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर इसी तरह आप देखिए कि और इस तरह के जो हमारे से बड़े ओहदों पे होते हैं वजीर मशीर, उनका मजाक और उनकी बातें करना इंतहाई बेअदबी है। अफसोस की बात है कि आज हमारा मीडिया और हमारा कल्चर ही बेअदबी का मीडिया बन गया। देखिए कोई कुछ भी करे ये बात नहीं है। आप सोचें कि आप देखें कि आप इसको खुशी का फख्र का मुकाम लेते हैं कि एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट के सर में जूता मारे, आप इसको कौन से इस्लाम कहेंगे? अल्लाह के नबी ने अबू जहल के सर में कितने जूते मारे, आप सोचिए। हम ऐसी चीजों को फिर उछालते हैं, फिर उसका स्लो मोशन दिखाते हैं। एक वक्त ऐसा आया था, शायद आप में से समझ गए होंगे, मुझे तो मेरे जैसे बंदे को तो कभी पता ही ना चलता अगर लोग ईमेल्स में वो क्लिप कहीं स्लो मोशन में कहीं बड़े कि एक नॉन मुस्लिम हुक्मरान को मुसलमान ने जूता मारा, आपने उसको इस्लाम से रोक लिया। आप क्या सोच सकते हैं सरे महफिल आप बच्चे को जूता मार के देखें फिर वो क्या करता है, ऐसे इस्लाम नहीं आता। ये इंतहाई बदतमीजी की बात होती है, ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि अगर गैर मुस्लिम तुम्हारे मुल्क में भी आ जाए तो उसकी इज्जत करो। समामा जो था यमामा का हाकिम, जब वो आया तो अल्लाह के नबी ने उसकी इज्जत की, आपने फरमाया उनज़िलुन नासी मनासी लहुम, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसकी और रब की बात है। जो भी बड़े होते हैं उनके कार्टून बनाना, उनका मजाक उड़ाना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। फिर इसी तरह देखिए रुतबे में जो लोग बड़े होते हैं यानी माँ बाप, फिर या कोई मालिक है आपका या कोई बॉस है, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए ये चीज जहन में रखिए कि बाज़ दफ़ा रिस्पेक्ट के तौर पर लोग खड़े हो जाते हैं, बस उस्ताद को देख कर खड़ा होना या माँ बाप को खड़ा होकर देखना, तो इसके अंदर एहतियात की जरूरत है। ये लाजिम नहीं है ना बनाए, देखा जाएगा आप क्यों खड़े हुए हैं। मेहमान को देखकर आप इसलिए खड़े हुए कि इस्तकबाल करें या जगह दें, बुजुर्ग आ गए उनको कुर्सी दे दें आप नीचे बैठ दें, कोई हरज की बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये सोच के कि इनको देख के खड़ा होना है, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया। अफसोस की बात है हमारे मुसलमान मुल्कों में आज भी ये बुराई मौजूद है कि टीचर के आने के ऊपर बच्चे खड़े हो जाते हैं। इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब लोग हबशा गए तो उन्होंने देखा कि बादशाह आता है तो दरबारी खड़े हो जाते हैं। सहाबे कराम ने कहा अच्छा अल्लाह के नबी की तो इससे ज्यादा इज्जत है। यहाँ से देखिए कि वो मरूफ नहीं होते थे, वो अल्लाह के नबी को उन सबसे ही ऊपर लेते थे। तो जब अल्लाह के नबी आए थे उन्होंने खड़ा होना शुरू किया तो आपने मना किया, क्योंकि क्या खड़ा होना क्या है, कूमु लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, ये कनूत क्याम नमाज का हिस्सा है जो इबादत है, तो लिहाजा इसको अवॉइड किया जाएगा। फिर इसी तरह बड़ों की जनरल बातें कर लें तो उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। बहुत दफ़ा बड़े एक बात को बार 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 करते हैं, सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें, अपना वक्त याद कर लें। ये कहना बस बस सुन लिया, बस अब चुप भी कर जाएं। एक तो आप शुरू ही हो जाती हैं, अम्मी आपकी तो टेप ही चल गई। इंतहाई बदतमीजी की बातें। फिर इस तरह बड़ों के लिए एक और अदब के कि दूर से उनको आवाज ना दें। कोई बड़ी मजबूरी, कोई ऐसी चीज है किसी खतरे से बचाना है, वरना इंतहाई ये गैर मुहज्जब लगता है कि कोई दूर खड़ा किसी को आवाज दे। फिर इसी तरह बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपकी बात ना समझे ना, तो अदब से समझाएं, प्यार से समझाएं। बाज बड़े वाकई स्टबन हो जाते हैं, नाकाबले बर्दाश्त होते हैं, तो उस वक्त फिर आप वही बात समझ लें कि वह जलना बाद कुमली बाद इन फितना, हमने बाज को बाज के लिए फितना बनाया। फिर इसके बजाय कि तहत्तुल बसा हद तक बड़ों की बात मानी जाए, शर्त क्या है कि वो दीन की बात के खिलाफ ना हो। अगर आपका किसी चीज में नफा और नुकसान है, दीन का कोई हर्ज नहीं, तो मान ले, आपको उस मानने पर अल्लाह ताला बहुत कुछ दे देगा। फिर इसी तरह एक वाक्या कहीं था कि हारून और रशीद अपने वक्त के शहजादे थे, बादशाह थे, तो खुद वो अपने उस्ताद की जूतियां उठाकर जाते थे। एक दफा इन्होंने अपने बेटे को देखा जो शहजादा था, कि जो अपने उस्ताद को वजू करा रहा था और पानी डाल रहा था, क्योंकि उस दौर में लोटों से वजू करते थे, टैप वाटर नहीं होता था। तो उन्होंने बेटे को डांटा, कहने लगे कि तुमने देखा कि उस्ताद पांव खुद धो रहा था, ये पानी डाल रहा था। उसने कहा कि तुमने ये क्यों ना किया कि एक हाथ से उसको पानी देता और दूसरे हाथ से उसके पांव को मलता। यानी ये वो इस तरह सिखाते, और बड़े लोग थे। इमाम बुखारी आपको पता है अपने दौर के आलिम थे, और खलीफा वक्त अपने आप को अपने बच्चों को उनकी खिदमत के लिए करता था, क्योंकि उनको इस चीज का एहसास था कि ये दीन के मुहाफिज हैं, तो इस तरीके से उनको लेना। फिर इसके अंदर आप देखिए, और एक चीज ये है कि उनके आगे ना चलो। बार दफा होता है कि किसी का अदब ही है और हुक्म भी है, दोनों में टकराव है। अदब का तकाजा है कि आप वो काम करें, मिसाल दे रही हूँ कि कोई भी बात जो भी हमने ली, किसी का जूता पकड़ना, लेकिन वो हुक्म देता है कि नहीं मेरा जूता नहीं पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या किया जाए? ये मुफस्सरीन ने सवाल उठाया कि अदब और हुक्म के बीच में क्लैश है तो क्या करें। तो फिर उसके लिए असूल है कि अल अमरु फौकल अदब, यानी हुक्म फिर माना जाएगा। वो कहते थे, मिसाल है कोई कहता नहीं चलो आप आगे आगे चलें, जल्दी जल्दी जाएं, तो ठीक है, रिस्पेक्ट तो ये कि पीछे चला जाए, लेकिन वो कह दे तो चलो। कोई कहता है मेरे हाथ ना चूमो, कोई मोहब्बत में चूमता उसको नहीं अच्छा लगता, इसी तरह कोई सामान उठाने लगे उसको मना करे, तो हुक्म को बहरहाल माना जाएगा। फिर आखिरी चीज जो यहां हम देखेंगे वो क्या है, कानून का अदब। कानून को आप हर एंगल से ले लें, शरीयत का अदब कानून, क्योंकि शरीयत साजी है कानून में, इसी के सारे अंदर सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, इसी के अंदर मुल्कों के कानून है, जिसको आप ट्रैफिक के कवानीन से लेके बाकी सारे कवानीन और वीजे और पासपोर्ट की पाबंदियों पे ले लें, ये लाजिम है। अफसोस की बात है, दुख की बात है कि आज हम मुसलमान सबसे ज्यादा कानून शिकन हो गए। हम फख्र करते हैं, हमारे लड़के रेड लाइट से गुजर जाएंगे और बाहर आगे जाके हंसेंगे कि देखा आज कानून तोड़ के आ गए। ये चीज दुरुस्त नहीं। इस्लाम चाहता है कि एक मोमिन रस्सी से बंधा हो, अपने आप को अंदर रखे, फिर ऐसा बंदा जब खुद को पाबंद महसूस करेगा इसे अना टूटेगी। अगर आप पूरी ये तस्किया की सीरीज में देखें ना, तो अदब का मुकाम अना के बाद आता है। जिस बंदे की अना बढ़ जाती है ना, वो फिर कोई अदब भी नहीं मानता, वो कहता मैं क्या करूं, मेरे लिए ऐसी बात नहीं है, और ऐसा बंदा फिर कानून की इताअत नहीं करता, वो सबको पीछे करके अपने आप को एक साइड पे करता है। अल्लाह ने कवानीन दिए, पूरी कायनात कवानीन पे, रात दिन सूरज चांद वक्त पे आते हैं, पंक्चुअलिटी, फिर इसी के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन की सूरत में है। इस्लाम दिन में 5 बार सफ़े बनवाने का हुक्म देता है नमाज में, कुरान पाक में एक पूरी सूरत है सफ़ के नाम पे। इसके बावजूद आज देखिए मुसलमानों का हाल क्या। नॉन मुस्लिमों के मुल्कों में होंगे, उनकी लाइनों में होंगे तो लाइन में लगेंगे, और जहाँ अपनी खाने की दावतें हों, चाहे रमजान की इफ्तारियां होगी, तो सफ़ नहीं बनाते। इसलिए इस्लाम सिखाता है कि तुम अदब करो, सीखो। आप देखिए कि अगर आप हिस्ट्री पे नजर डालें ना, तो सुलह हुदैबिया ये वो नुक्ता था जिसकी बुनियाद पे फतह मक्का की बुनियाद खड़ी हुई थी, और उस सुलह हुदैबिया के मौके पे सहाबा कराम ने इंतहाई डिसिप्लिन और अदब का मामला किया, वरना उस वक्त खाना जंगी हो जाती, नबी सल्लम के खिलाफ लोग इस तरह हो गए। ये वाहिद मौके अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी में कि आपने कहा कि जाओ अहराम खोल दो, हम आगे नहीं जा रहे, और आपकी बात सुन के कोई उठा ही नहीं। अल्लाह के नबी इतना इस चीज को दिल पे लेके आए कि अपने हुजरे में आ गए कि मेरी बात सुनने से पहले ये हुक्म मानने को तैयार होते थे, आज मैंने कहा तो कोई उठा ही नहीं। उम्मे सलमा आपके साथ ही, आपकी बीवी, वो समझ गई आपका दर्द कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी अपने साथियों के इस अमल से। तो आपने कहा आप गम ना करें, बस आप ऐसा करें कि आप अपना अहराम खोलें, अपने बाल उतारें, ये भी आएंगे। और जो ही अल्लाह के नबी ने ये काम किया, तो फिर लोग बर्दाश्त ना कर सके कि अल्लाह का नबी ये काम करे और हम ना करें। आप देखें कि उस मौके पर अगर अल्लाह के नबी ना रोकते तो बहुत बड़ी जंग होती। लेकिन उमर फारूक कहते हैं मुझे सारी जिंदगी इस बात का मलाल रहा कि मैं सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी के आगे ये क्यों बोला कि अल्लाह के नबी के हम हक पे नहीं है। यानी मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रही हूं कि कैसे डिसिप्लिन किया था अल्लाह के नबी ने उस गिरोह को। उमर फारूक अगर गुस्से वाले थे लेकिन अल्लाह के नबी के आगे और कानून के आगे नहीं बोलते थे। खालिद बिन वलीद अगर बहादुर थे लेकिन नहीं, अली बहादुर थे, वहीं रुक जाते थे जहां रुका जाता था, हैंड ब्रेक्स लगते थे। ये डिसिप्लिन आज मुसलमानों को चाहिए, इतनी इताअत, इतनी सबमिशन। आप कह सकते हैं कि मक्का के अजीम शान फतह का नुक्ता आगाज कानून के अदब से हुआ। आपने कहा सब्र करो, और उमर कहते हैं मैं बाद में कितने रोजे रखता रहा सिर्फ उस दिन के अपने गुना को मिटाने के लिए कि मैं अल्लाह के नबी के आगे बोला। आज आप देखिए कि हम मुंह उधर करते हैं तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर कानून बनते हैं और टूटते भी हमसे ही हैं। कानून बनते हैं बना जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। तो लिहाजा आखिरी चीजें इसके बारे में यही कहूंगी कि अदब का दो तरह से ताल्लुक है, जाहरी पहलू और बातनी। जाहरी पहलू हरकत से दिखता है, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप उठते कैसे हैं, आप हंसते कैसे हैं। इस्लाम ने इस पे भी पूरा टीच किया, इंशाल्लाह आगे कुछ जगहों पे हम जाके बात करेंगे। दूसरा है अदब का बातनी पहलू, इसको असल में दिल की हालत से मामूर कर सकते हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं अदब व एहतराम, एहतराम हुरमत से है। जब दिल में किसी चीज की हुरमत होती है तो उसका असर फिर अदब पे आता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह हमें बादब बना दें। बच्चों को भी अगर आप इस्लाह करें तो अदब से करें। बाज अपने बच्चों पे चीखते चिल्लाते गुस्सा करते, नतीजा वही होता है कि फिर उनके कानों पे बात नहीं आती। अब ये पूरे जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इसको आप एक असाइनमेंट की सूरत में अपने लिए कर सकते हैं। सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 अपने लेवल बना लें, और कुछ सवाल है उनका जवाब आप अपने लिए ले सकते हैं। यही सारी कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले खालिक के साथ अदब, क्या मैं अल्लाह की अता करदा चीज़ों को उसके रास्ते में लगाती हूँ, यानी अपनी शक्ल, अपने माल, अपने इल्म, अपने वक्त, औलाद को अल्लाह के रास्ते में लगाती हूँ कि नहीं, जिस लेवल पे उसको क्लिक कर दें। फिर मेरा इखलाक अल्लाह की रजा के लिए है या दूसरों को दिखाने के लिए। फिर इसके बाद घर वालों से अदब, मेरी आवाज़ फ़ोन पर जो होती है क्या वही स्टाइल मेरा घर वालों से बात करने पर भी होता है। हम सबसे ज़्यादा बद इखलाक होते हैं तो अपने घर वालों से होता है। शोहर साहब बाहर हैं तो वो बॉस बने हुए और हरदल अजीज हैं, सेक्रेटरी से बात करेंगे तो पता नहीं किस लफ्ज़ में करेंगे, और बेगम को देखा तो गुस्सा आ गया। ये अदब नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से बेहतर है, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने घर वालों से बेहतर हूँ। फिर इसी तरह आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि क्या मैं नमाज की तौफीक को अल्लाह का एहसान समझती हूँ, क्या मैं शौरी तौर पर अल्लाह से बातें करती हूँ, कभी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए तो मैं अल्लाह ताला से शिकवा करती हूँ या उसकी तरफ रुजू करती हूँ। फिर इसी तरह आप कुरान की महफिलों में अपने रवैये को चेक कर लें, क्या मैं मजलिसों में सुकून से बैठती हूँ, क्या मेरी नज़र घड़ी पर तो नहीं होती, और क्या मैं फ़ोन पर बातें तो नहीं करती। फिर नबी सल्लम और उमर की बातें, जितनी भी बातें हमने कही हैं ये सारी इसके अंदर आप लेंगे, और दुआ करें, यकीन करें, मैं कहती हूँ कि अल्लाह इस दौरे कुरान को हमारी एक नई शख्सियत का गम्मास बना दे। हम अपने चलने को देखें, बोलने को देखें, आंखें खोलने को देखें, हाथ हला हला के करते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं आगे जाके एक मौजू मैंने रखा हुआ जहन में जो एक पारे के साथ, तो वहाँ हम कुछ बॉडी लैंग्वेज पे भी बात करेंगे। देखिए हमें खूबसूरत बनना के नहीं, आप कहेंगे आपने 20 मिनट शायद लगा दी इस टॉपिक पे, बात क्या थी, आधा पारा हो जाना था इसमें, हो जाता, लेकिन मेरा ये किरदार कैसे बदलता अगर मेरा अंदर मेरे मैनर्स नहीं बदले, मेरा इल्म कहाँ आएगा। जब तक हमारे मैनर्स खूबसूरत नहीं होते हमारा इल्म नहीं फायदेमंद। अफसोस की बात है आज मुसलमानों के पास इल्म के खजाने मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप इल्म की काने कह सकते हैं, लेकिन बात करने का स्टाइल, लोगों के अंदर उठना बैठना इस दर्जे का नहीं है कि लोगों को इम्प्रेस कर सके। तो अब ये सारी चीज़ों को सामने रखें, इंशाल्लाह पारे में कुछ चीज़ें तो खुद बखुद ही आपके जहनों में आएंगी, कहीं इशारा कर सकी तो करूँगी कि आप इस पारे को अब कैसे अदब और मैनर की रोशनी में देखेंगे, और चेक करते जाएंगे कि यहाँ मैं अल्लाह ताला के साथ अदब की बात है, रसूल के साथ, या फिर हम आम इंसानों के साथ।